नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही प्रेरक उद्बोधन पर विचार करने वाले हैं। इसका शीर्षक है जीवन साधना बनाम दिव्यता की खेती। ये हमें समझाता है कि कैसे खुद को साधना मतलब जीवन साधना और दिव्यता पाना ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं।
जी बिल्कुल, ये एक बहुत गहरा विषय है।
तो गुरुदेव अक्सर पात्रता की बात करते हैं ना, मतलब योग्यता। ये दिव्यता की खेती के लिए इतनी जरूरी क्यों बताई गई है? जैसे दुनिया में भी होता है ना, विवाह के लिए योग्य वर चाहिए या सरकारी वजीफे के लिए अच्छे अंक।
हाँ, ये गुरुदेव का एक बहुत ही केंद्रीय विचार है। पात्रता का सीधा सा मतलब है ग्रहण करने की क्षमता, आप में वो योग्यता है या नहीं। उन्होंने वर्षा का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। देखिए, बारिश तो सब जगह होती है, पर कोई थाली है, कोई कटोरी है, कोई तालाब है।
हाँ हाँ,
सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही पानी जमा कर पाते हैं।
अच्छा,
तो ईश्वर की कृपा या संसार की कोई भी सहायता, वो भी हमें हमारी पात्रता के हिसाब से ही मिलती है। अगर हम तैयार नहीं हैं, पात्र नहीं हैं, तो फिर शिकायत करने का कोई मतलब नहीं रह जाता।
तो मतलब पहले खुद को उस लायक बनाना होगा। जैसे आपने कहा, बर्तन को सीधा रखना होगा पानी भरने के लिए, या खेत को तैयार करना पड़ता है बुआई से पहले।
बिल्कुल बिल्कुल, साधना का सही अर्थ यही है, स्वयं को साधना, तैयार करना। जैसे अगर कपड़े को रंगना है तो पहले उसे धोना पड़ता है, मैल हटाना पड़ता है।
सही बात है।
वैसे ही दिव्यता जैसी कोई ऊंची चीज धारण करने से पहले अपने मन को, अपने जीवन को साधना पड़ता है, निर्मल करना पड़ता है। गुरुदेव ने माँ और गंदे बच्चे का उदाहरण भी दिया है। माँ बच्चे को साफ करने के बाद ही तो गोद में लेती है ना।
हाँ, ये उदाहरण बड़ा सटीक है।
तो साधना वो स्वयं को निर्मल और सुयोग्य बनाने की प्रक्रिया है। सर्कस के जानवर भी सधने के बाद ही मूल्यवान होते हैं, वरना
वरना खतरनाक या बेकार।
हाँ ठीक, वैसे ही जब व्यक्ति सध जाता है तो वो मूल्यवान बनता है।
ये बात बहुत दिलचस्प है। तो मतलब हमारा ध्यान बाहर भगवान से मांगने से ज्यादा खुद को सुधारने पर होना चाहिए।
पूज्य गुरुदेव ने वो ऊसर जमीन को उपजाऊ बनाने का या माली द्वारा एक पेड़ पर कई कलम लगाने का उदाहरण भी दिया था शायद।
हाँ,
वो सक्रिय आत्म परिवर्तन के प्रतीक है। और वो दो मालियों वाली कहानी भी इसी से जुड़ती है। एक माली था जो बगीचे को सींचता था, अपने कर्तव्य का पालन करता था,
और दूसरा
बस राजा की मतलब मालिक की तस्वीर की पूजा करता रहता था। कर्म कुछ नहीं
तो सफल कौन हुआ? जाहिर है, जिसने कर्म किया।
एकदम सही, जिसने अपना कर्तव्य निभाया। और यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। हम सब एक तरह से ईश्वर के इस विराट बगीचे के माली हैं।
अच्छा,
हमारा कर्तव्य क्या है? अपने आसपास यानी हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, ये जो विराट सत्ता है, उसकी सेवा करना, यही सच्ची ईश्वर सेवा है। अर्जुन को या यशोदा या कौशल्या जी को भगवान ने अपना विराट रूप इसी संसार में, इसी कर्म क्षेत्र में दिखाया था, है ना?
हाँ, ये बात तो है। मतलब पूजा पाठ से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने कर्तव्यों का निर्वाह।
बिल्कुल, पूजा पाठ का अपना महत्व है, लेकिन वो कर्म का, कर्तव्य का स्थान नहीं ले सकते।
और इस तैयारी में, इस साधना में शुद्धि की प्रक्रिया पर भी काफी जोर दिया गया है। जैसे कच्ची धातु को, लोहे को या सोने को आग में तपाकर शुद्ध करते हैं।
हाँ, शुद्धि साधना का एक अभिन्न अंग है। जैसे आपने कहा, धातु को आग निखारती है, हीरे को तराशने से उसकी कीमत और चमक बढ़ती है, पानी को डिस्टिल करते हैं भाप बनाकर, तो वो शुद्ध हो जाता है। वैसे ही साधना की अग्नि, साधना की प्रक्रिया हमारे जीवन की जो अस्त व्यस्तताएं हैं, जो कमियां हैं, मलिनताएं हैं, उनको दूर करती है। जैसे दिवाली पर हम घर साफ करते हैं ना, लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए।
हाँ, करते हैं।
बस वैसे ही ईश्वर के निवास के लिए, दिव्यता के अवतरण के लिए अपने मन को, बुद्धि को, स्वभाव को, कर्मों को निर्मल करना होगा।
एक आम धारणा है कि केवल नाम जप से मुक्ति मिल जाती है। गुरुदेव ने वाल्मीकि, अजामिल, अंगुलीमाल जैसे उदाहरणों का भी जिक्र किया।
हाँ, और उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है। ये सच है कि इन लोगों का उद्धार हुआ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कैसे हुआ। उनका उद्धार सिर्फ नाम लेने भर से नहीं हो गया। मुख्य बात यह है कि जब वो ईश्वर की शरण में आए, उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन बदल डाला।
अच्छा,
सारे पाप कर्म छोड़ दिए, पश्चाताप किया और पूरी तरह से एक नया सात्विक जीवन जिया। तो वो केवल नाम जप नहीं था, वो जीवन का पूर्ण परिवर्तन था, वो थी सच्ची साधना।
तो ये कोई शॉर्टकट नहीं था मतलब?
बिल्कुल नहीं, ये पूर्ण आत्मसमर्पण और जीवन रूपांतरण था।
और मुक्ति, गुरुदेव जीवन मुक्ति की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ मरने के बाद मोक्ष नहीं?
सही, जीवन मुक्ति का अर्थ है जीते जी बंधनों से मुक्त हो जाना, यहीं इसी जीवन में। और ये बंधन कौन से हैं? गुरुदेव ने मुख्य रूप से तीन बताए हैं, वासना, तृष्णा और अहंता।
वासना, तृष्णा और अहंता?
हाँ, वासना मतलब अंधी इच्छाएं, भोग की लिप्सा। तृष्णा मतलब कभी न बुझने वाली प्यास, और पाने की चाह। और अहंता मतलब मैं और मेरा का गहरा भाव, अहंकार। ये तीनों हमारी जीवन की नाव में छेद की तरह हैं, जो हमें इस भवसागर में डुबो सकते हैं।
और इनसे मुक्ति पाना हमारे अपने हाथ में है।
हाँ बिल्कुल, ये बाहरी बंधन नहीं है, ये हमारे मन के भीतर हैं। इन्हें साधना से, विवेक से, वैराग्य से काटना होता है। लोभ और मोह, यही असली हथखड़ी बेड़ियां हैं जो हमें बांधे रखती हैं।
अक्सर हम सोचते हैं कि परिवार के लिए बहुत कुछ जमा करना है, अगली पीढ़ियों के लिए।
हाँ, और गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य की जरूरतें तो बहुत कम हैं, पर ये लोभ ही है जो उसे अनावश्यक संग्रह के जाल में फंसा देता है। परिवार को स्वावलंबी बनाना जरूरी है, उन्हें अच्छे संस्कार देना जरूरी है, न कि उनके लिए इतना जमा कर देना कि वो आलसी या दिशाहीन हो जाए, वो बोझ बन जाता है।
सही कहा, असली संपत्ति तो संस्कार ही है।
बिल्कुल, जमाना खराब है ये कहने के बजाय खुद को अच्छा बनाएं। गुरुदेव कहते हैं जैसे अगर हमारी आंखें ही खराब हों तो हमें दुनिया धुंधली दिखेगी, या पीला चश्मा पहन लें तो सब पीला ही दिखेगा। वैसे ही अक्सर हमें दूसरों में वही दोष ज्यादा नजर आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर होते हैं। जब हम खुद को ठीक करते हैं, अपने नजरिए को साफ करते हैं, तो दुनिया अपने आप सही नजर आने लगती है, दृष्टि बदल जाती है।
तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि सच्ची साधना केवल कुछ पूजा पाठ या कर्मकांड तक सीमित नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि ये जीवन का एक समग्र रूपांतरण है, अपनी पात्रता विकसित करना, खुद को शुद्ध करना।
एकदम, मुख्य बात यही है कि दिव्यता कोई ऐसी चीज नहीं जो कहीं बाहर से आकर हम पर बरस जाएगी, उसे अपने भीतर ही विकसित करना पड़ता है, साधना से, शुद्धि से, सेवा से, अपने कर्तव्यों को निभाकर। ये कर्म और आत्म सुधार का एक सक्रिय मार्ग है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। अगर हमारा जीवन एक खेत की तरह है, तो दिव्यता की फसल उगाने के लिए आज हम अपने मन से वासना, तृष्णा और अहंता रूपी कौन सी विशेष खरपतवार को उखाड़ फेंकने की शुरुआत कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। ओम शांति।